सुप्रभात प्रिंटपॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं प्रवीण स्वामी का लेख, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएफआई पर पाबंदी काफ़ी नहीं, सिमी पर बैन से इंडियन मुजाहिदीन बनने का उदाहरण सामने है। 2001 में फरवरी की एक देर शाम सादिक इसरार शेख को मुंबई के चीता कैंप क्षेत्र की गलियों में चलने वाले मदीना होटल में चाय का न्योता मिला। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से नाराज़ अपनी पीढ़ी के कई अन्य युवा मुसलमानों की तरह शेख भी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में शामिल हो चुका था। हालांकि एयर कंडीशनर सुधारने वाला ये मैकेनिक कुछ ही महीनों में इस्लाम पर जोशीली तकरीरें सुन सुनकर ऊब गया और फिर सिमी से अलग होने के करीब एक साल बाद मदीना में ये बैठक हुई जो अंततः पूरे भारत में अपने गहरे निशान छोड़ गई। 9/11 हमले के दो हफ्ते बाद भारत ने सिमी पर पाबंदी की दिशा में कदम बढ़ाया और संगठन पर देशद्रोह के आरोप लगाए। भले सिमी के सैकड़ों गुर्गे गिरफ्तार किए गए और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस बल और खुफिया एजेंसियां सच्चाई की तह तक पहुंचने से कहीं न कहीं चूक गईं। मदीना होटल में बैठक के बाद शेख ने बांग्लादेश की सीमा पार की और दुबई होकर ढाका से कराची जाने वाली अमीरात की फ्लाइट में सवार हो गया। शेख ने पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान, जिसे भारतीय कानून के तहत मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ बतौर साक्ष्य इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसमें बताया था कि कराची से वो बहावलपुर के पास स्थित लश्कर ए तैयबा के शिविर में चला गया। वहां उसने सिमी के कुछ पूर्व सदस्यों के साथ ट्रेनिंग लेनी शुरू की जो इंडियन मुजाहिदीन बना रहे थे। सिमी की कहानी इसी हफ्ते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर आगे की संभावनाओं और खतरों के बारे में समझने में मददगार हो सकती है। सिमी पर पाबंदी ने ऊपरी तौर पर नज़र आने वाली इस्लामी राजनीति लामबंदी को तो रोक दिया था, लेकिन जिहादी समूहों पर नकेल कसने में नाकाम रही। इससे बदतर स्थिति तो यह कि जिहादी नेटवर्क और अधिक सतर्क हो गए, बड़े कायदे से एकदम गोपनीयता के साथ काम करने लगे और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों में आने से बचते रहे। नतीजा 2005 से 2011 के बीच करीब 6 सालों तक भारत की पुलिस और खुफिया सेवाओं को देश के सबसे घातक शहरी आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ा। 2016 के बाद से पीएफआई को अक्सर अपने सदस्यों के इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूहों में शामिल होने के आरोपों का सामना करना पड़ा है। केरल निवासी शाजीर मंगलसेरी अब्दुल्ला, जिस पर एनआईए ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती करने का आरोप लगाया था, उसे भी पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का समर्थक था। पीएफआई के हाउस जर्नल थेजस में बतौर ग्राफिक डिज़ाइनर काम करने वाला साफवान पुक्टेल कथित तौर पर शाजीर के रंग रूटों में शामिल है। वहीं मंसीद बिन मोहम्मद भी है, जिसने अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन के लिए हिंदुत्व पर शोध किया था। कन्नूर मूल का मोहम्मद समीर किसी समय वालपट्टनम में पीएफआई का सब डिविजनल कन्वीनर हुआ करता था। बाद में वो अपनी पत्नी फौजिया और 3 बच्चों के साथ सीरिया में इस्लामिक स्टेट खिलाफत में चला गया था और माना जाता है कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी और बच्चे वहां एक जेल शिविर में कैद हैं। इस साल के शुरू में असम पुलिस ने बारपेटा के पूर्व पीएफआई जिला प्रमुख मकीबुल हुसैन पर अंसारुल्ला बंगला टीम, बांग्लादेश में अलकायदा का एक सहयोगी संगठन है, उसके लिए भर्ती करने का आरोप लगाया था। ये संगठन वामपंथी धर्मनिरपेक्षतावादियों और हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कई हमले कर चुका है। तेलंगाना पुलिस ने सैकड़ों युवकों को कुंगफू कॉम्बैट की ट्रेनिंग देने के आरोप में पीएफआई कार्यकर्ता अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में कागजों के 3 ढेर, 3 हैंडबुक, 1 नोटबुक और बस व ट्रेन की कुछ टिकटों से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। कर्नाटक और केरल में हत्या की हालिया घटनाओं से बहुत पहले पीएफआई काडर पर मजहबी हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा था। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी NDF, जो कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिथा नीथि पासराय के साथ मिलकर पीएफआई का गठन करने वाले 3 संगठनों में शामिल था, उसके 2 सदस्यों पर 2003 में माराड़ में 8 हिंदुओं की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में शामिल होने का आरोप लगा था। हालांकि बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई थी। फिर 2011 में पीएफआई सदस्यों ने BCOM द्वितीय वर्ष के छात्रों की आंतरिक परीक्षा के लिए सेट किए गए प्रश्न पत्र के एक सवाल को लेकर इडुक्की कॉलेज के प्रोफेसर TJ जोसेफ का हाथ काट दिया था। 2013 में केरल पुलिस को कन्नूर के पास नारथ में एक कैंप का पता लगा जहां पीएफआई सदस्य बम बनाने और तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसे सिमी के मामले में संगठन और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी समूहों के बीच कोई लिंक स्पष्ट नहीं है, ज़्यादातर मामलों में इस्लामिक स्टेट के रंगरूट भी सक्रिय कैडर के बजाय पीएफआई के पूर्व सदस्य रहे। सादिक शेख का मामला एक उदाहरण के तौर पर सामने है कि कैसे सिमी के साथ रहते जिहाद का कोई मौका न मिलने पर शेख सही लिंक तलाशने के लिए दूर के रिश्तेदार सलीम आज़मी, जो कि बाद में एक विवादित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, उसके संपर्क में आया। आज़मी ने ही कथित तौर पर उसके गिरोह के सरगना अमीर रजा खान से मिलवाया, जो इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख सदस्यों की ट्रेनिंग के लिए फंडिंग करता था। समीर जैसे पूर्व पीएफआई सदस्यों की इस्लामिक स्टेट में भर्ती ने प्रवासियों पर भी काफ़ी असर डाला है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती करने वालों ने कई ऐसे भारतीयों को रिक्रूट किया है जिनका पीएफआई से कोई लिंक नहीं है, जो व्यक्तिगत संबंधों और ऑनलाइन दुष्प्रचार के प्रभाव को रेखांकित करता है। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद सिमी की भाषा स्पष्ट तौर पर जिहादी समर्थक हो गई। 1999 में कानपुर में सम्मेलन के दौरान 7 वर्षीय गुलरेज सिद्दीकी ने तकरीबन 20,000 सिमी सदस्यों के सामने खड़े होकर कहा, इस्लाम का गाजी बुद्धशिकन मेरा शेर ओसामा बिन लादेन। सिमी ने यह कहते हुए खिलाफत की हुंकार भर दी थी कि भारत के मुसलमानों के मामले में लोकतंत्र विफल हो गया है। यहाँ तक कि अल्लाह से ये दुआ भी की कि वो मंदिरों पर हमले करने वाले 11वीं शताब्दी के आक्रांता महमूद गजनी का कोई अवतार भेजे। सिमी की गलतियों से सबक लेते हुए पीएफआई हमेशा भड़काऊ भाषा से परहेज करता रहा है। शोधकर्ता मोहम्मद सिनान सीएच के मुताबिक संगठन का संविधान इस बात पर जोर देता है कि वो देश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बनाए रखने, शांति कायम रखने और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक संगठनों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पीएफआई बड़े पैमाने पर कल्याणकारी गतिविधियों में भी लगा रहा है। उदाहरण के तौर पर संगठन के काडर ने असम में हाशिए पर रहने वाले बंगाली भाषी मुस्लिम समुदायों के लिए स्कूल खोले, केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाए और उत्तर भारतीय राज्यों में चिकित्सा सेवा मुहैया कराता रहा। इस तरह के कार्यक्रमों के लिए धन के इंतजाम के बारे में पीएफआई का दावा है कि उसके करीब 5 लाख सदस्य 10 रुपये प्रतिमाह का चंदा देते हैं। इसके अलावा पूरे भारत और पश्चिम एशिया के समृद्ध दानदाता भी हैं। सिमी ने भी अपने शुरुआती दौर में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। उदाहरण स्वरूप 1982 में इसने एक अनैतिकता विरोधी सप्ताह मनाया जिसमें कथित तौर पर अश्लील किताबें चलाई गईं। इसने युवाओं को ड्रग्स और अल्कोहल से दूर करने जैसे कार्यक्रमों के जरिए समुदाय के बीच अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। इतिहासकार इरफान हबीब, इक्तदार आलम खान और केपी सिंह ने 1976 के एक निबंध में लिखा कि सिमी की समाज सेवा परोपकार के लिए नहीं थी। इसका असली मकसद मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देना था, न कि मुस्लिम पिछड़ेपन को दूर करना। स्कॉलर योगिंदर सिकंद का गहन आकलन बताता है कि पीएफआई सिमी जैसे संगठन फले फूले क्योंकि इसने अपने समर्थक मुस्लिम युवाओं को एक ऐसी ताकत और सांगठनिक क्षमता का एहसास कराया जिसका उन्हें अपने वास्तविक जीवन में अभाव लगता है। संगठन ऐसे राजनीतिक परिदृश्य की वजह से भी अपनी पैठ बना पाया क्योंकि मुख्यधारा की बड़ी पार्टियों के भीतर मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार घटता रहा है। इसकी वजह से खालीपन उपजा जिसकी भरपाई सिमी जैसे इस्लामी संगठन ही कर सकते थे। इनकी बयानबाजियों ने मुस्लिमों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान का एक भ्रमजाल पैदा कर दिया। सिमी पर बैन ने इस्लामवाद के उस जहर को तो मिटाया जिसे संगठन ने फैलाया था और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की आशंका थी। हालांकि इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सिमी सदस्य होने के आरोप में तमाम युवा मुस्लिमों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। हालांकि इसमें से अधिकांश को बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन उनमें इसकी वजह से एक गहरी कड़वाहट घर कर गई। विडंबना ही कहेंगे कि सिमी के पूर्व अध्यक्ष शाहिद बद्र फलाही, जो उन राजनीतिक इस्लामवादियों के एक समूह का हिस्सा थे जिन्होंने जिहाद के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया था, उनको दीवार पर एक पोस्टर लगाने के आरोप में 14 साल विचाराधीन कैदी के तौर पर गुजारने पड़े। यही नहीं, 2005 में इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से किए जाने वाले बम धमाकों के सिलसिले में धरपकड़ के लिए स्थानीय पुलिस को सिमी के कार्यकर्ता ही आसान लक्ष्य लगे। इसकी वजह से असली अपराधियों को कई सालों तक बेलगाम हमले जारी रखने का मौका मिलता रहा। PFI इस्लामिज्म के जिस नफरती चेहरे को सामने लाता है उससे साफ है कि गहराई से चढ़े जमाए राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं ने कितना जटिल रूप ले लिया है। इससे निपटने के लिए सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई ही नहीं बल्कि राजनीतिक एक्शन की भी ज़रूरत है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे सुप्रभात के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।